सो हम लोग श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 14वां अध्याय के 36वें श्लोक 36 वर्ष पर चर्चा कर रहे हैं। स न प्रसीदताम भामो भगवानुर्वनुग्रह व्याधस्यापि अनुकम्प्यानां स्त्रीणां देव सतीपति। इसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की, वे हम पर प्रसन्न हो क्योंकि वे मेरी बहन सती के पति मेरे बहनोई हैं। वे समस्त स्त्रियों के आराध्य देवी हैं। वे समस्त ऐश्वर्यों के व्यक्ति, ऐश्वर्यों के स्वामी हैं और उन स्त्रियों के प्रति कृपा प्रदर्शित कर सकते हैं जिन्हें असभ्य शिकारी भी क्षमा कर देते हैं। तात्पर्य, शिवजी दिति की एक बहन सती के पति हैं। दिति ने अपनी पत्नी, अपनी बहन सती की प्रसन्नता का आह्वान किया जिससे सती अपने पति से उन्हें क्षमा करने के लिए आग्रह कर सके। इसके अतिरिक्त शिवजी समस्त स्त्रियों के आराध्य स्वामी हैं। वे स्वभावतः स्त्रियों के प्रति अतीव दयालु हैं जिन पर असभ्य शिकारी तक कृपा प्रदर्शित करते हैं। चूंकि शिवजी ही स्वयं स्त्रियों की संगति में रहते हैं अतः वे उनके दोषपूर्ण स्वभाव को भली भांति जानते हैं और वे दिति के अपरिहार्य अपराध को गंभीरता से नहीं भी लें जो उनके दोषपूर्ण स्वभाव के कारण हो गया था। प्रत्येक कुमारी शिवजी की भक्तिन समझी जाती है। दिति को अपने बाल्यकाल की शिव पूजा का स्मरण हो आया और उसने दया की भीख मांगी। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददादीशो पदान्तिकं। वन्देहं श्री गुरु श्रीपादकमलम् श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं सागर जातम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि। जय दाम सुरतो पंगो मम बंधमतेर गति मत्सर्वस्य पदाम भोजो श्री राधा मदन मोहनो। दिव्य वृंदारण्य कल्प दुर्माध श्रीमद रुद्राकार सिंहासनस्थो श्रीमद राधा श्री गोविंद देव पृष्ठलि से मानो स्मरामि। श्रीमान रास रस आरंभी वंशी वट तटस्थिता कर्षण वेणु सुनिर गोपीर गोपीनाथ श्रीस्तुमा। श्री राधा सह श्री मदन मोहन श्री राधा सह श्री गोविंद चरण श्री राधा सह श्री श्री गोपीनाथ ऐ तीन ठाकुर भय गौड़ियार नाथ। ऐ तीन ठाकुर गौड़िया के करिया छे नाथ को साथ ऐ तीनेर चरण बंधु तीने मुरनाथ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। सो यहाँ पर बात चल रही है कि दिति काम वासना से पीड़ित हो गई थी और उसने रिक्वेस्ट किया अपने पति को कश्यप मुनि को कि आप प्लीज़ मेरी जो काम वासना को शांत करो, आपका कर्तव्य है मेरी काम वासना को शांत करने का। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, है ना, उनकी धर्म पत्नी है, पति का कर्तव्य है धर्म पत्नी को संतुष्ट करना, है ना, जिस प्रकार पत्नी का कर्तव्य है पति की सेवा करना। सो धर्म पत्नी थी और संतुष्ट करना कर्तव्य है और इंद्र तृप्ति के लिए नहीं बोल रही थी, संतान के लिए बोल रही थी, है ना। तो संतान उत्पत्ति के लिए अगर स्त्री और पुरुष पति पत्नी आपस में मिलते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी धर्म के विरुद्ध था क्योंकि समय अनुचित था। समय अनुचित होने के कारण दिति को वैश्या के साथ उसकी उपमा की गई है। नहीं, सब चीजें ठीक हैं, सिर्फ टाइम जो है वो उचित नहीं है, समय एप्रोप्रिएट नहीं है, और इसी सिर्फ इसी कारण से भागवतम में दिति को वैश्या के साथ में उसकी तुलना करते हैं। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत गंभीरता से सोचने की बात है। कृष्णा कह रहे हैं कामा विरुद्धा धर्म विरुद्धा कामस्मि, कि जो धर्म के अविरुद्ध है, मतलब जो धर्म के अनुसार है वो काम मैं हूँ, लेकिन जो धर्म के विरुद्ध है, जिससे वर्ण संकर हाँ संतान की उत्पत्ति होगी, वो काम मैं नहीं हूँ। तो अगर सिर्फ ये बोला जाए कि संतान की उत्पत्ति के लिए अगर संभोग किया जाए तो ठीक है, बात सही नहीं है। इस वृतांत से हमें पता चल रहा है कि और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, और प्रभुपाद ने ये कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया। प्रभुपाद ने बोला कि देखो, एक संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार, तो गर्भाधान संस्कार में प्रभुपाद ने बोला कि जो संभोग है वो सीक्रेट अफेयर नहीं है, वो प्राइवेट अफेयर है, सीक्रेट अफेयर नहीं है। ऐसा नहीं है कि छुप के कोई, मतलब किसी को पता नहीं चलना चाहिए, एकांत में करने का कृत्य है, लेकिन ऐसा नहीं है किसी को पता नहीं चलना चाहिए, है ना। और गर्भाधान संस्कार में एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ब्राह्मणों को और रिलेटिव्स को इनवाइट किया जाता है, और सब मिलके भगवान के नामों का जप करते हैं, है ना। और जो पति और पत्नी है, दोनों को जो उनकी चेतना है, वो चेतना बहुत शुद्ध बनाई जाती है भगवान के नामों का कीर्तन करके। और फिर जो पति है वो कई मंत्र हैं जिसमें पति पत्नी को बोलता है कि मैं आपको ये बीज प्रदान कर रहा हूँ, इससे योग्य संतान की उत्पत्ति हो और भगवान की सेवा में लगे, है ना। ये गर्भाधान संस्कार है। और प्रभुपाद ने बोला कि मेरे बाद भी मेरे दो तीन भाई बहन का जन्म हुआ, तो मैंने देखा हमारे जो पिता हैं वो जब मेरी माँ गर्भवती थी तो हमारे पिता हर महीने दो तीन कुछ संस्कार करते रहते थे, है ना, जिससे चेतना शुद्ध बनी रहे और जिससे अच्छी संतान की उत्पत्ति हो, है ना। तो दिति यहाँ पर उसको डर लग रहा है, उसको, है ना, उसको डर तो लग रहा है कि संध्या के समय, मतलब ऐसा कृत्य किया उसने तो उसका परिणाम होगा। और आगे आप देखेंगे कि आगे के श्लोकों में उसके इस डर की पुष्टि भी की कश्यप मुनि ने, कि आगे क्या होने वाला है, इस कृत्य का क्या परिणाम होगा। लेकिन जो दिति है वो अपने इस कृत्य का जो परिणाम है उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं है, उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं है, वो उससे बचने का प्रयास कर रही है, है ना। इसलिए उसने बोला कश्यप मुनि को कि प्लीज, हाँ, आप जो है आप शिव जी को रिक्वेस्ट करो कि मेरा गर्भ नष्ट नहीं करे, प्लीज आप कुछ ऐसा कीजिए कि मेरे गर्भ की रक्षा हो जाए, कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। और कश्यप मुनि ने बोला था कि देखो शिव जी मतलब उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा कृत्य किया, इसलिए उसने शिव जी से अपने संबंध को उजागर किया कि मेरे बहनोई हैं, उनकी जो दक्ष की पुत्री हैं दिति, और कि सबसे छोटी बहन है सती, और सती के पति हैं शिव जी। तो उन्होंने कहा भामा, वो मेरे बहन के पति हैं, तो वो डेफिनेटली इस बात को ध्यान रखेंगे, जो उनसे मेरा संबंध है, मेरा रिश्ता है, उसका थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, है ना। वो इस बात को समझ ही नहीं पा रही, वैश्वानाम यथाशंभो, एक छोटे से छोटा वैष्णव भी समझता है इस बात को कि जो बॉडली कॉन्सेप्ट है देहात्म बुद्धि अच्छी चीज नहीं है। और जो वैष्णव नाम यथाशम को शिव जी परम वैष्णव है, क्या उनको नहीं पता होगा कि ये जो अहम ममेती, ये जो शारीरिक संबंधों के ऊपर आधारित, शरीर के ऊपर आधारित जो संबंध है कुछ वैल्यू नहीं है उसकी, है ना। और हमारे आचार्य बता रहे हैं कि जो काम वासना है, काम वासना विवेक को नष्ट कर देती है, ना। जो काम वासना है, काम वासना के चलते क्या सही है क्या गलत है उसकी उसको समझ पाना बड़ा कठिन हो जाता है। और व्यक्ति अगर किसी को पता भी हो क्या सही है क्या गलत है, फिर भी गलत काम करने पे मजबूर हो जाता है। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं भगवद गीता में बलादिव नियोजिता, ऐसा लग रहा है कोई जबरदस्ती मुझे इस काम में लगा रहा है, बलादिव नियोजिता, मैं करना नहीं चाह रहा लेकिन जबरदस्ती कोई करवा रहा है, तो हे कृष्णा मुझे बताओ इसका कारण क्या है। तो कृष्ण ने बोला कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, ये काम वासना के कारण है। काम वासना जो है वो व्यक्ति को अकृत्य, जो विकर्म, जो काम करने योग्य नहीं है वो काम भी करने पर मजबूर कर देता है, है ना, बाधित कर देता है, ये काम करना पड़ेगा। तो वो काम वासना कहाँ से आई, वो काम वासना हमारी अपनी इच्छा से आई, भगवान का रोल नहीं है इसमें। लोग बोलते हैं कि भगवान भगवान ने करवा दिया, भगवान का रोल नहीं है। भगवान मान लिया कि भगवान एनर्जी दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, भगवान फैसिलिटीज दे रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं इस काम को करने के लिए, भगवान अनुमति दे रहे हैं, लेकिन भगवान कुछ खुशी से अनुमति नहीं दे रहे, भगवान मजबूर है अनुमति देने के लिए क्योंकि हम लोगों ने जिद पकड़ ली है, है ना। तो कृष्णा का रोल यही है, उपदृष्टा अनुमंता च, कृष्णा का रोल यह है कि वो देख रहे हैं और अनुमति दे रहे हैं, लेकिन इच्छा क्योंकि हमारी है, क्योंकि हमारी जिद है, इसलिए उसके जो परिणाम है उसका फल भी हमें भुगतना पड़ेगा। और शिवजी को भूतनाथ कहते हैं, नहीं, चराचर के स्वामी हैं शिवजी। और लोग बोलते हैं शिवजी भूतों के साथ रहते हैं, और भूतों के साथ रहना उनकी सेवा है, क्योंकि जो लोग इतने खराब काम करते हैं कि उनको स्थूल शरीर भी नहीं मिलता, है ना। तीन चीजें हैं, आत्मा, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। जब ये तीनों चीज मिल जाती हैं, तो एक हम बोलते हैं कि कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, पेड़ पौधे, ये सब बन गए, 84 लाख यूनियन बन गए। लेकिन अगर जो आत्मा है और सूक्ष्म शरीर, ये हमेशा साथ रहेंगे इस भौतिक जगत में, ये कभी अलग नहीं होते। लेकिन अगर किसी कारणवश स्थूल शरीर नहीं मिल पाया तो भूत बन जाता है। सो शिव जी की सेवा है ऐसे जीवों का ध्यान रखना जिनके इतने खराब काम है कि उनको स्थूल शरीर भी नहीं दिया गया। आमतौर पे एक शरीर छोड़ा दूसरा शरीर पकड़ लेते हैं ना, जैसे हमारे शास्त्र में बताया भी क्या, जैसे एक कीड़ा है वो एक पत्ते से दूसरे पत्ते पे जाता है, तो पहले अगले पत्ते को पकड़ता है फिर पिछला पत्ता छोड़ देता है, है ना। अगर आपने देखा हो पेड़ पे अगर कोई कीड़ा रेंग रहा है तो पहले दूसरे पत्ते को पकड़ेगा फिर पिछला पत्ता छोड़ेगा, ऐसे ही पहले अगले शरीर का निर्माण हो जाता है फिर पिछला शरीर छूटता है, और उस दौरान में बहुत सारी चीजें होती है, है ना। लेकिन अगर ऐसे काम कर दिए, जैसे फॉर एग्जांपल सुसाइड कर लिया, है ना, तो अगला शरीर नहीं मिलता, फिर उसका वो व्यक्ति भूत बन जाता है, और भूत बन के मंडराता रहेगा। तो जो ऐसी अवस्था में है कि स्थूल शरीर भी नहीं मिल पाया, चाहे कुत्ते बिल्ली कहीं क्यों ना हो, ऐसा शरीर भी नहीं मिल पाया, ऐसे व्यक्ति को जिसको कोई पसंद नहीं करता, कोई शरण नहीं देना चाह रहा, उसको कौन शरण देते हैं, उसको शिवजी शरण देते हैं। और शिवजी हमेशा देखते रहते हैं कि कौन व्यक्ति काम धर्म के विरुद्ध काम में रत है, और शिवजी अगर देखते हैं कि कहीं पर कोई व्यक्ति काम के धर्म के विरुद्ध जो है काम वासना में लगा हुआ है, तो शिव जी एक आधे जो भूत इतने सारे असंख्य चल रहे होते हैं उनको बोलते हैं जाओ उस गर्भ में प्रवेश कर जाओ, जाओ उस गर्भ में प्रवेश कर जाओ, यही होता है बस, है ना। और प्रभुपाद बोलते हैं कि जब कोई राक्षस बुरी प्रवृत्ति वाले का जन्म होता है तो बहुत सारे उत्पात होते हैं पृथ्वी पर, है ना। सो जो भूत है आमतौर पे जो सृष्टि का जो नियम है अलग चलता है ना, कि जो जीवात्मा है वो बादल में मिल जाएगी, फिर बारिश होगी जमीन पे गिर जाएगा जीवात्मा पानी के साथ, फिर वो पौधे में प्रविष्ट कर जाएगा, पानी जो है वो पौधे पी लेंगे तो जीवात्मा पौधे में प्रविष्ट कर जाएगा, फिर उस पौधे को पुरुष खाएगा तो जीवात्मा पुरुष के शरीर में प्रवेश कर जाएगी, उसके शरीर से उसके वीर में प्रवेश कर जाएगी, और जब वो वीर दान करेगा तो वो स्त्री के गर्भ में प्रवेश कर जाएगी। ये साधारण प्रक्रिया है गर्भाधान की। लेकिन अगर धर्म के विरुद्ध काम हो रहा होगा तो शिवजी उसमें हस्तक्षेप करते हैं और आसुरिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को जिसके बहुत ही खराब कर्म थे उसको उस गर्भ में शिवजी स्थान दे देते हैं। तो जो दिति हैं वो ये प्रार्थना कर रही है कि क्योंकि वो मेरे संबंधी हैं इसलिए मेरा ध्यान रखेंगे, उनको इस बात का अंदाजा नहीं है दिति को कि शिवजी इस शारीरिक संबंधों से शरीर से बिल्कुल प्रभावित नहीं होते, उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, है ना। वैष्णव नाम यथाशा। और काम वासना से प्रभावित होकर गलत काम करने के दो उदाहरण है, है ना, जिसे कहते हैं ना टॉप मोस्ट उदाहरण कि हाँ यार देखो वो काम वासना से ऐसा हो गया, है ना। तो हमारे जो आचार्य उदाहरण देते हैं बोल रहे देखो दो ही उदाहरण है मुख्य रूप से, वैसे तो हर जीव काम वासना से पीड़ित है लेकिन ऐसे कुछ लोग जिन्हें सही आचरण करना चाहिए था लेकिन काम वासना ने उनको गलत आचरण करने पर मजबूर कर दिया, ऐसे दो उदाहरण है हमारे शास्त्रों में। एक तो द्वितीय है ना, दक्ष की पुत्री है, कश्यप मुनि की पत्नी है, पूरे संस्कारों के बारे में धर्म के बारे में पूरी जानकारी है, उसको गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए था, अपने पर संयम रखना चाहिए था लेकिन वो संयम रख नहीं पाई। काम वासना इतनी फोर्स है, काम वासना की इतनी वेग है काम वासना का कि उसको नियंत्रित नहीं कर पाई वो। तो एक ये उदाहरण हो गया, और दूसरा उदाहरण किसका है, दूसरा उदाहरण है ब्रह्मा जी का, कि ब्रह्मा जी इतने वेदों के ज्ञाता हैं और लेकिन फिर भी काम वासना से पीड़ित होकर अपनी पुत्री के पीछे ही भागना शुरू कर दिया। जब शिवजी गुस्से में आ गए और शिवजी उनको मारने के लिए भागे, ब्रह्मा जी को ये क्या कर रहे हो, ये काम आपको शोभा देता है क्या, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये दो उदाहरण से हम क्या सीख सकते हैं, हमें ये सीखना चाहिए कि हम काम वासना से सुरक्षित नहीं है। ऐसा नहीं है हम भक्त बन गए तो हम काम वासना से सुरक्षित हो गए, माया हमें माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, है ना। माया जब भी चाहे हमारा सब कुछ बिगाड़ सकती है, है ना। हमें कम से कम ये हमेशा इस बात का, एक भक्त को इस बात की हमेशा चिंता रहनी चाहिए कि गुरु की कृष्ण की कृपा से बचाओ, नहीं तो माया इतनी स्ट्रांग है कभी भी मुझे पकड़ लेगी, कभी भी मुझे नीचे गिरा देगी, है ना। अगर एक भक्त ये समझना शुरू कर दे कि माया मेरा क्या बिगाड़ सकती है, मेरे हाथ में माला है, मुझे माया से कोई डर नहीं है, तो माया उसको बिल्कुल ऐसा एग्जैक्ट टाइम आएगा माया पकड़ के नीचे गिरा देगी, दोबारा उठ नहीं पाएगा। तो इसलिए एक भक्त को ये नहीं सोचना चाहिए कि माया मुझ पर कुछ प्रभाव नहीं डाल सकती, उसे हमेशा माया प्रभाव नहीं डाल सकती क्योंकि हमने माया के स्वामी की शरण ली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम माया से खिलवाड़ करना शुरू कर दें, माया की अवहेलना शुरू कर दें, माया का अनादर करना शुरू कर दें। हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी बहुत बड़े व्यक्ति के घर में गए और उसके पास एक बहुत बड़ा कोई आई डोंट नो जर्मन शेफर्ड बुलडॉग उसके घर में है, पालतू कुत्ता है उसका, तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मेरे इसके स्वामी से मेरी फ्रेंडशिप है तो मैं इसको ठोकर मार देता हूँ या इसका कान पकड़ के खींच लेता हूँ तो कुत्ता अपना काम करेगा फिर नहीं। तो अच्छा यही है कि उससे अपनी दूरी बनाए रखें, उससे खिलवाड़ नहीं करें, है ना। ये बहुत आवश्यक है। और हमारे शास्त्रों में उदाहरण भी दिया गया है कि शिवजी तक माया के प्रभाव में आ जाते हैं, काम वासना से ग्रसित हो जाते हैं। मोहिनी का जो भगवान का मोहिनी रूप उन्होंने जब देखा तो अपने पे नियंत्रण नहीं रख पाए, है ना शिवजी। तो एक भक्त को अपने आप को बहुत बड़ा या माया से ऊपर नहीं समझना चाहिए, उसको हमेशा अपने आप को बहुत कमजोर समझना चाहिए। अगर अपने आप को कमजोर समझेंगे तो हो सकता है कि हम ये जीवन भक्ति में पूरा जीवन करते रह सकें। अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे, अगर हम डर के नहीं रहेंगे माया से, अगर हम ये नहीं समझेंगे कि माया हमें कभी भी गिरा सकती है, ये तो माया की दया है कि वो भगवान के भक्त को ज़्यादा परेशान नहीं कर रहे, है ना। जब तक हम इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे हमेशा हमारे पतन की संभावना रखी। मैंने कई भक्तों को हमने आप लोगों ने भी देखा होगा, है ना, बहुत सारे भक्त होते हैं बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे होते हैं, प्रचार कर रहे होते हैं, बड़े प्रभावशाली होते हैं, लेकिन पतन हो जाता है, है ना। तो ऐसा नहीं सोचा जी उसका पतन हो गया मेरा पतन नहीं होगा, है ना। उसका तो फिर 20 साल के बाद हुआ, हमारा तो पहले ही होने की पूरी संभावना है, है ना। इसलिए हमें बहुत सावधानी और बहुत संयम बरतना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि केवल ब्रह्मचारी को स्त्रियों से ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, जो गृहस्थ भी हैं, जो शादीशुदा हैं उनको भी, जो पर स्त्री हैं उनसे बहुत ज़्यादा उनसे बात नहीं करना चाहिए, उनके उनके साथ एकांत में अलग से बात नहीं करना चाहिए। अगर आप बोलो कि आपकी सेवा है किसी को मार्गदर्शन देने की, आपकी सेवा है तो अच्छी बात है, तो भी किसी को एकांत में अलग से शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। अगर वो अपने जो स्त्री है अपने पति के साथ या और ग्रुप के साथ नहीं हो तो अलग से बात नहीं करनी चाहिए। वो उसकी सुरक्षा के लिए नहीं है, वो आपकी सुरक्षा के लिए है ना। ऐसा नहीं हो कि आपका मन विचलित हो जाए। इसी प्रकार स्त्री को भी पर पुरुष से एकांत में बात करने से बचना चाहिए, है ना। भागवत में बताया गया है कि जिस प्रकार स्त्री पुरुष के लिए माया है उस प्रकार पुरुष भी स्त्री के लिए माया है। ऐसा नहीं है सिर्फ स्त्री माया का रूप है, पुरुष भी माया का रूप है ना? तो बहुत सावधानी संयम बरतने की आवश्यकता है। और सती डर रही है, सती कह रही है कि ऐसा नहीं हो कि शिवजी दंडित कर दें, है ना, ऐसा नहीं हो कि शिवजी आशुतोष है मान लिया लेकिन गुस्से में भी बहुत जल्दी आ जाते हैं, है ना, देखो उन्होंने दक्ष का वध कर दिया, है ना। लेकिन दिति इस बात को अप्रिशिएट नहीं कर पा रही, इस बात को समझ नहीं पा रही कि शिवजी को अगर गुस्सा आता है, अगर वो क्रोधित होते हैं तो वो भी दूसरे के लाभ के लिए हैं। और भागवतम में दक्ष का जब वध किया शिवजी ने तो वहां पर श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि दक्ष का वध करना शिवजी की कृपा है, अनुकंपा है। अगर वो दक्ष का वध नहीं करते तो उनको वैष्णव अपराध का बहुत ज्यादा फल भोगना पड़ता दक्ष को, तो उन्होंने क्रोध प्रदर्शित करके शिवजी ने उनको वैष्णव अपराध जो बहुत टाइम तक उनको भोगना पड़ता उससे उनको बचा दिया। वैष्णव जब भी क्रोध करेगा वो क्रोध से भी फायदा ही होगा, है ना। जैसे नारद जी ने बोला मणिग्रीव नलकुबर को जाओ पेड़ बन जाओ, तो उससे उनको फायदा हुआ नुकसान हुआ, उनको उससे फायदा हुआ, है ना, भगवान के दर्शन हो गए, नहीं तो भगवान के दर्शन कैसे उनको नसीब में होते उनके, भगवान के दर्शन करने की कोई योग्यता नहीं थी। लेकिन क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त ने उन पर क्रोध किया, इसी कारण से उनको भगवान के दर्शन हो गए। जिस प्रकार भगवान सर्व मंगल में है, जिस प्रकार भगवान परम है, भगवान की करुणा और क्रोध में कुछ फर्क नहीं है। भगवान अगर सिर पर हाथ फेरे या गला काट दे, दोनों एक बराबर है, दोनों का फल एक समान है, सदगति प्राप्त होगी। उसी प्रकार जो भगवान के भक्त हैं, अगर वो कृपा करते हैं, अगर वो आपको प्रेम पूर्वक कुछ वचन बोला या गुस्सा किया, दोनों में कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं है, हमारे माइंड में फर्क चल रहा होता है ना। अगर जो गुरु हैं, जो वैष्णव हैं, अगर प्रेम से बोल रहे हैं तो भी कृपा, अगर आशीर्वाद दे रहे हैं तो भी कृपा है, अगर वो डांट रहे हैं तो भी कृपा है ना। दोनों सिचुएशन में कृपा है, बल्कि अगर डांट रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमें ऐसे काम करने चाहिए कि हमें डांट पड़े, मैं ये नहीं कह रहा कि उल्टे सीधे काम शुरू कर दो, गुरु बोले ये क्या बेवकूफी कर रहे हो गधे एकदम बिल्कुल, तो आप बोले अब ठीक है ना, ऐसा नहीं कह रहे। लेकिन गुरु उस व्यक्ति को डांटते हैं, उस भक्त को डांटते हैं, उसको और अच्छे से सेवा में लगाने के लिए, है ना। अच्छी सेवा की लेकिन और अच्छे से सेवा करो, है ना। आप बोलेंगे कि जो अद्वैताचार्य ने भी तो जानबूझकर चैतन्य महाप्रभु से डांट खाई थी, नहीं। अद्वैताचार्य जो है वो उनके पिता की उम्र के थे, चैतन्य महाप्रभु की, तो चैतन्य महाप्रभु और उनके गुरु के गुरु भाई थे अद्वैताचार्य, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु उनका बहुत सम्मान करते थे, है ना। लेकिन अद्वैताचार्य को पता था चैतन्य महाप्रभु कौन है, उनको बहुत दुख होता था कि चैतन्य महाप्रभु उनको एक गुरु के समान आदर दे रहे हैं, जबकि अद्वैताचार्य अपने आप को उनके सेवक समझते थे, जो कि सही भी था। तो अद्वैताचार्य ने बोला कि चैतन्य महाप्रभु ऐसे नहीं मानेंगे, मुझे सम्मान देने से पीछे नहीं हटेंगे। तो वो नवद्वीप से चल के शांतिपुर चले गए, उनके उनके दो घर थे अद्वैताचार्य के, एक नवद्वीप में और एक शांतिपुर में, और वहाँ जाके मायावाद का प्रचार शुरू कर दिया उन्होंने। चैतन्य महाप्रभु को पता चला, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ गए और तैर कर नवद्वीप से शांतिपुर पहुँचे, दोनों भाई तैरते हुए। और जब दूर से देखा अद्वैताचार्य ने कि चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं, तो जोर जोर से मायावाद का प्रचार शुरू कर दिया। चैतन्य महाप्रभु ने उनकी दाढ़ी पकड़ के नीचे गिरा दिया उनको, और पीटना शुरू कर दिया, लाते मारी, घूसे मारे उनको। सीता देवी ने बोला नहीं मारो नहीं मारो, मर जाएंगे। अद्वैताचार्य ने बोला अब ठीक है, अब आपने मुझे अपना सेवक स्वीकार कर लिया है ना। तो ऐसा नहीं है कि अद्वैताचार्य ने ऐसा किया तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। अद्वैताचार्य की सेवा, उनकी स्थिति बहुत अलग है, बहुत उच्च स्थिति है उनकी, स्वयं महाविष्णु है। हमें अच्छे से प्रयास करना चाहिए, और हमें ये सोचना चाहिए कि अगर कभी बहुत सौभाग्यवश गुरु ने हमें नोटिस कर लिया और देख लिया कि सेवा अच्छे से नहीं कर रहा, और अच्छे से सेवा करने के लिए अगर उन्होंने हमें डांट दिया, तो हमें सौभाग्यशाली समझना चाहिए, भाग नहीं जाना चाहिए, है ना। गुरु की डांट सहना हर किसी के बस की बात नहीं होती, है ना। एक बार एक इधर पुरी में एक सन्यासी थे, मठाधीश थे, और बहुत ही स्ट्रिक्ट थे वो, है ना, बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, और पूरे शास्त्रों का उनको ज्ञान था, लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन उस मठ में सिर्फ दो ही व्यक्ति रहते थे, एक वो स्वयं सन्यासी और दूसरा उनका सेवक, तीसरा व्यक्ति कोई जाता ही नहीं था, है ना। सो एक बार हमारे इस्कॉन के एक सन्यासी गए वहाँ पर उस मठ में उनसे मिलने के लिए, तो मिलते ही वो सन्यासी ने बोला देखो तुम्हारे में ये कमी है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। ये करो वो करो, है ना। यहाँ पे देखो कोई आता ही नहीं है, कोई रुकता नहीं है। तो उस सन्यासी को तब रियलाइज हो गया कि अगर बहुत ज़्यादा डांटेंगे लोगों को, लोगों के कल्याण की भावना से तो भी लोग भाग जाते हैं। अगर आप इस्कॉन के सन्यासी भी देखो, तो अगर आप देखो तो शुरू शुरू में बहुत कड़क, बड़े कठोर होते हैं। जैसे अगर आप गोपाल कृष्ण महाराज के अगर आप शुरू के लेक्चर सुनो, आप बोलोगे ये तो बिल्कुल शेर की तरह दहाड़ रहे हैं, है ना। अभी आप लेक्चर सुनो ऐसा लग रहा है शहद की वर्षा हो रही है। और पहले बहुत डांटते थे गोपाल कृष्ण महाराज, है ना, लेकिन अभी किसी को डांटते नहीं है। कोई एक आधे व्यक्ति को, एक आध भक्त को डांट दिया तो बहुत ही दुर्लभ है ऐसा देखना। तो एक बार किसी भक्त ने पूछा कि महाराज इतना चेंज कैसे आ गया आप में, आप पहले ऐसे आप डांट भी देते थे लोगों को, और एक दो ब्रह्मचारियों को तो गोपाल कृष्ण महाराज ने मारा भी था तो गलत काम कर रहे थे, है ना। तो उन्होंने बोला अब इतना चेंज कैसे आ गया। उन्होंने बोला कि अगर मैं डांटूंगा तो भाग जाओगे आप, तो इसलिए नहीं मैं अब मैंने डांटना छोड़ दिया, है ना। तो हमें अपने आप को ऐसे स्तर पर उठाना चाहिए कि हम अगर ऐसे काम नहीं करने चाहिए गुरु की डांट मिले, लेकिन अगर बाय चांस हमसे कुछ गलती हो जाए, गुरु ने डांट दिया, तो हम इतने हमारी श्रद्धा होनी चाहिए गुरु में, इतनी शरणागति होनी चाहिए कि हम फिर भी भक्ति में बने रहें और इसको अपना सौभाग्य समझें, है ना। ये बहुत आवश्यक बात है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दिति इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि उससे गलती हुई है, चलो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, अपनी सजा से बचने का प्रयास कर रही है। तो हम देख सकते हैं कि जो दिति है उसकी स्थिति इतनी उच्च स्थिति नहीं है दिति की, है ना। लेकिन एक भक्त को ऐसे जो प्रसंग है, ऐसे व्यक्ति हैं, उनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि उनके आचरण में ऐसी कमी है, ऐसा उनको व्यवहार नहीं करना चाहिए था। जब मैं अपने आप को इस तरह से तैयार करता हूँ या तैयार करूँगी कि मैं इस प्रकार की गलती नहीं करूँ, है ना। और जो भी शास्त्र अनुमोदित तरीका है उसके अनुसार अपना जीवन बिताऊं। जैसे हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि गर्भाधान में किस किस समय गर्भाधान नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे व्रत के समय गर्भाधान जो है संभोग नहीं करना चाहिए, श्राद्ध के समय नहीं करना चाहिए, दिन के समय नहीं करना चाहिए, है ना। तो हम इन सब चीज़ों का जो है बहुत ध्यान हमें रखना चाहिए। और कई भक्त जो हैं, हम देखते हैं कि बहुत सारे भक्त इस्कॉन में हजारों लाखों भक्त हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो भक्तों के जो बच्चे हैं उनमें भी जो है वो भक्तों वाले गुण नहीं होते हैं। नहीं तो भक्तों के जो बच्चे हैं उनमें तो भक्तों वाले गुण होने चाहिए स्वाभाविक रूप से, है ना। तो हम ये समझ सकते हैं कि जब उस समय जब वो गर्भाधान कर रहे थे उस समय उनकी चेतना शुद्ध नहीं थी, है ना। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि अगर चेतना शुद्ध हो, अगर वो सभी विधि विधानों का पालन करके पूरी प्लानिंग से अगर वो गर्भाधान करते तो भगवान के भक्त उनके गर्भ में शरण नहीं लेते, ऐसा संभावना बहुत कम है, है ना। ऐसा नहीं है कि भक्त बन गए तो सब ठीक हो गया। भक्त बनने के बाद भी हमें सभी विधि विधानों का, नियमों का पालन करना चाहिए, नहीं तो भक्त होने के बावजूद भी वर्ण संकर ही हम लोग पैदा करेंगे, है ना। तो भक्त बनने का मतलब सब ठीक है, सब लाइसेंस मिल गया, ऐसा नहीं है। भक्त बनने के बाद भी पूरी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हरे कृष्णा।